रिश्तेदारों के हकूक। रिश्तेदार का लफ्ज़ आप देखिए, जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि उसने हमें मुख्तलिफ रिश्तों में डाला है। और पीछे हमने रिश्तों की तीन किस्में भी पढ़ ली थी। तो रिश्तेदारों के अमूमी हकूक़ पर अगर थोड़ी सी बात करूँ तो अल्लाह ने ख़ुद ये हुक्म दिया है सूरत निसा आयत 1 और नहल 90 के, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। फिर इसी तरह से करीबी रिश्तेदारों के साथ वही सलूक और बर्ताव होना चाहिए जो इंसान को अल्लाह ने कह दिया। मसलन करीबी रिश्तेदारों में देखिए, माँ बाप, औलाद, भाई बहन, खाला, मामू, चचा, फुप्पो। अल्लाह ने खाला को माँ की जगह और चचा को बाप की जगह रखा, ये हदीस में मिलता है आपको। तो इनकी इज्जत करना, इनके आगे अदब से रहना, ये सरासर दीनदारी है। वो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं जो अपने बापों के भाइयों यानी चचाओं और दूसरे बुजुर्गों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छे मामले को सिला रहमी कहते हैं। कब? जब वो इवन जवाब में आपके साथ अच्छा मामला ना भी करें। ठीक है, तो चंद रिवायतें नोट कीजिए इस मौजू को समझने के लिए। सिला रहमी से रिस्क और उम्र में कुशादगी होती है, बुखारी 5985 और मुस्लिम 6523। कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र बड़ी हो और कौन नहीं चाहता कि उसका रिस्क बढ़े? तो फिर सिला रहमी कीजिए। फिर रिश्तेदारी को जोड़ने वाले को रब जोड़ता और काटने वाले को काटता है, बुखारी 5987। कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बुखारी 5984, मुस्लिम 6520। कतई रहमी क्या है? आप नहीं मिल रही हैं अपने ससुराल से, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, बच्चों को नहीं रोक सकते आप। याद रखिए, उनके खून के रिश्ते हैं, आपको भी नहीं रुकना, लेकिन उनको तो बिल्कुल भी नहीं रोकना। तलाक हो गई, शौहर अलग, बीवी अलग, आप कहते हैं खबरदार जो बच्चा बाप को मिला या बाप बच्चे से मिलने की कोशिश करे, ये जुर्म होगा। फिर इसी तरह जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता, सही बुखारी 7376 और मुस्लिम 6030। रहम का जज्बा बदबख्त के दिल से निकाल लिया जाता है, यानी अल्लाह दिल में से नरमी निकाल देता है, तिर्मिज़ी 1923। फिर रहम खाने वालों पर आसमान वाला रहम करता है, अबू दाऊद 4941 और तिर्मिज़ी 1923। हाफ़िज़ इब्ने हजर अल अस्क़लानी बहुत ही प्यारे मुहद्दिस गुजरे हैं, कहते हैं कि रिश्तों के तीन दर्जे होते हैं, थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ द किनशिप। नंबर एक मवासिल, मीम वाओ अलिफ स्वाद लाम, वसल सही है, सिला रहमी जैसे। मुराद क्या है? रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो है जो दूसरे से आगे बढ़कर हुस्ने सलूक करता है, ना कि वो जिसकी तरफ लोग बढ़कर आए, यानी ये पहल करता है हमेशा, ये लोगों के साथ अच्छा मामला करने में पहला होता है। दूसरा है अल मकाफी, किफायत से, अलिफ लाम मीम काफ अलिफ फाया, बराबर का बदला देने वाला। ये कौन है? जो लेता है और बराबर का बदला देता है, यानी भड़के ज्यादा नहीं करता लेकिन बराबरी के साथ अच्छा ही रखता है। तीसरा है कतई रहमी करने वाला, जिससे आगे बढ़कर हुस्ने सलूक किया जाता है और वो नहीं करता। जब दोनों जानिब से ही काटते हैं तो फिर रिश्ता तो कट ही जाता है। फतुल बारी जिल्द 10 437। अब आप और मैं अपने आप को देखें कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, हम रिश्तेदारियों को कहाँ समझते हैं। अल्लाह आपको मुझे हिदायत दे। तो रिश्तेदारी का तो हमने मुकाम देख लिया, अब देखिए कि रिश्तेदारों के हकूक़ क्या हैं। ये बहुत अहम सवाल है, स्पेशली कुछ सिस्टर्स आके मेरे से ख़ुद भी पूछती हैं कि कुरान पढ़ते हैं तो सिला रहमी की तो बहुत बात है, तो फिर रिश्तेदार बुलाएं तो ना जाएं, फिर उनकी मेहंदियों में ना जाएं और उनके ऐसी दावतें जिसमें कोई नाफरमानी है, और जी रिश्तेदारों का सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है वैसा है ना, ये क्वेश्चंस। तो नोट कीजिएगा क्या चीज़ रिश्तेदारियों के हकूक़ में आती है। नंबर एक हुस्ने सलूक, सूरत निसा 36। दूसरी बात बड़ों की इज्जत और छोटों पे रहम, अबू दाऊद 4943 और तिर्मिज़ी 1919। तीसरा तीमारदारी, कोई बीमार है तो जाइए आदत कीजिए, मुस्लिम 6551। नेक्स्ट थिंग क्या है? ताज़ियत और तसल्ली, कब मौत हो जाए या हादसा हो जाए, तिर्मिज़ी 1073। नेक्स्ट है मुसीबत में हमदर्दी, और नेक्स्ट क्या है? नरम पहलू रखना, ख्वाह रिश्तेदार जालिम और सख्ती ही करें, सही मुस्लिम 6525 और फ़ुस्सिलत 34। आपको पता है कि दुश्मन दोस्त बन जाते हैं अच्छे ताल्लुक की वजह से। फिर अगला इनका हक है कि अगर रिश्तेदार मोहताज हैं तो सदके की इब्तिदा इनसे करनी चाहिए। वबदा बिमन दाउल, क्या पता चला कि सदका देना है? आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक है कोई भी मोहताज, दूसरा है वो मोहताज जो रिश्तेदार भी है, तो किसको दीजिए? दोहरा अजर क्यों? एक सिला रहमी का और एक सदके का। बुखारी 2318 और मुस्लिम 2313। फिर नेक्स्ट, ये बहुत कम लोगों को पता, सिला रहमी का सबसे बेहतरीन इजहार अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। अपने रिश्तेदारों में कोई बुराई देखी तो अच्छे तरीके से खैर ख्वाही के साथ रोकिए और नेकियों की रगबत दीजिए। सूरत शोरा 214। कुछ लोग सबको कहते रहते हैं, रिश्तेदारों को नहीं कहते। फिर अगला इनका हक है कि रिश्तेदारों की तकलीफ को दूर कीजिए। किसी भी तकलीफ में बहुत अजर है किसी की तकलीफ को दूर करने का। फिर इसी तरह रिश्तेदार को खुश कीजिए। कैसे? इनके पास जाइए किसी ऐसे मौके पे जब उनकी खुशी है, लेकिन शर्त एक है कि इसको फर्ज ना समझ लें, ना जाने पे किसी के ऊपर कतअ रहमी का फतवा ना लगा दें और उस खुशी के मौके पे अल्लाह की नाराजगी का कोई काम ना हो। ठीक है? फिर रिश्तेदारी तोड़ने वालों से रिश्ते जोड़िए। सही मुस्लिम 6525, फुस्सिलत 34। और करीबी रिश्तेदारों को ज़्यादा हक दीजिए। और उसके बाद अल अक्रबु मिनल अक्रब का असूल है, बुखारी 5971। बस अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनकी तो कोई टेक केयर नहीं और खाला फूफी मामू को देख रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। अब आप देखिए कि इस्लाम रिश्तों को इतना जोड़ता है, और रिश्ता जुड़ता है तो फिर माशरे भी जुड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप इस्लाम का एक बहुत कीमती महाज है। यानी एक छोटा सा जुमला बोल के आगे जाने की इजाज़त दीजिए, और वो क्या है कि वो कौमें जो तीर तलवारों से और बड़े बड़े वेपन से नहीं डरें थी, नहीं टूट रही, नहीं टूटेंगी, बहुत स्ट्रांग है, वो आज अपने वीक फैमिली सेटअप से टूट रही हैं। आज पूरा ही वेस्ट अपने कच्चे और कमज़ोर फैमिली सेटअप की वजह से जुबूहाली का शिकार है। इस्लाम में स्ट्रांग फैमिली सेटअप है। हर घर ओल्ड होम है, हर घर डे केयर है, बच्चे भी उधर। फैमिली सेटअप के कमज़ोरी की दलील क्या है? कि वहाँ ओल्ड होम्स होंगे, वहाँ डे केयर सेंटर्स होंगे, यतीम खाने होंगे। और स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप यानी कह लीजिए आइडियल मुस्लिम सोसाइटी में कोई एक ओल्ड होम भी नहीं होगा। वजह? कोई देगा अपनी कीमती मोती? क्या आप हमारे घर की दुआएं आप ले जाइए सिर्फ इसलिए कि हम सहूलत से सोएंगे, ये बूढ़े हो गए, अब आप इनको देखें भले। हम अपनी सारी दुआएं भी भेज देते हैं ओल्ड होम्स में सिर्फ इसलिए कि बेटा भी काम करता है, बहू भी काम करती। देखिए, उल्टे कपड़े पहनेंगे तो सांस तो घुटेगा, राइट में लेफ्ट और लेफ्ट फुट में राइट जूता पहनेंगे तो पाँव तो दबेंगे। आज ये हो रहा है, उल्टे जूते पहन के चलते हैं इसलिए बार बार ठोकरें खाते हैं। इस्लाम पे रहेंगे, हर चीज़ को उस सेटअप पे रखिए, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक होगा इंशाल्लाह। बहन भाइयों के हकूक, क्योंकि फिर अगला टॉपिक शुरू होगा ना, भाई बहनों के भी हकूक होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। सूरत निसा पहली आयत, या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। रिश्ते की बुनियाद पड़ती है कहाँ? तकवा के ऊपर। तो जिस तरह शौहर बीवी के साथ ये मामला है, बहन भाइयों के साथ तो बदरजे उत्तम होगा, इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्तों की बातें की हैं उसमें भाई बहनों के साथ मामला बहुत ज़रूरी है। क्या करें अपने भाई बहनों के साथ? यानी एक तो होते हैं सगे बहन भाई, ऑफ कोर्स उन्हीं की इस वक्त बात हो रही है। ओवरऑल तो हमने बहुत कुछ कह सुन लिया, लेकिन करना क्या है? नंबर एक, अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलिए। फिर स्माइल की बात आ गई, चौड़े चेहरे, खुशी के साथ, स्माइल के साथ। मुस्नद अहमद 14766 और तिरमिज़ी 1970, आपने फरमाया हर नेकी सदका है। और ये भी नेकी है कि अपने भाई बहन के साथ मिलो और उसके बर्तन में अपने डोल से कुछ डाल दो। क्या पता चला कि आप देखिए कि कुरान में कितने भाइयों का जिक्र है, लिखिए ज़रा। मूसा और हारून, और बोलिए, यूसुफ और अखवान यूसुफ, शाबाश। और बोलिए जी, हाबील और काबील लिखिए, गुड। और भाई बहन का लिखिए, मूसा और उख्ते, उख्त क्या होती है, बहन, ओके। और लिखिए, और क्या भाई बहन का ताल्लुक कहीं है, बाप बेटी का तस्करा किधर है कुरान में, शुएब और उनकी बेटियां, जी ठीक है। और हजरत मरियम और उनकी माँ का जिक्र है, ईसा और यहया का जिक्र है, कजन्स थे लेकिन भाइयों की मिसल थे। आप देखिए कि ये रिश्ते कितने प्यारे हैं, ख़ास तौर पे अगर इस वक्त भाई और बहन या भाई भाई और बहन बहन सारी ही पॉसिबल है, विरासत में इनका अलग जिक्र है कलाला के नाम पे, सूरह निसा की आखिरी आयत भी यही है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मूसा को फिरौन के महल में पहुंचने के बाद उसकी माँ से मिलने का एहतमाम किसने किया, बहन ने किया। हज़रत उमर की हिदायत का ज़रिया कौन बनी, तो आपका मेरा क्या फ़र्ज़ है। बिलीव मी, भाई बहन एक छत तले बड़े होते हैं लेकिन बाद में अलग अलग घरों में चले जाते हैं, अलग शहरों में, अलग मुल्कों में। इनके दीन की इस्लाह, हम बहन भाइयों के और कोई हकूक ना भी दे सके ना, एक तो वो तो जो सिबलिंग्स होते हुए बचपन में, वो तो एक बड़ी सिंपल बात है, लेकिन आप बचपन से ही अगर अपने बच्चों को अपने बहन भाइयों की मोहब्बत देना चाहते हैं, नंबर एक, तकाबुल ना कीजिए। अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे या बच्चा बच्ची जो भी है, आप इसको अलग से आप समझ लें, एक बड़ा तेज़ है, दूसरा बड़ा सीधा, एक बहुत आहिस्ता बोलता है, एक बहुत ऊंची बोलता है, तकाबुल ना करें, रिश्ते टूट जाते हैं, तकाबुल में शख्सियतें मसख हो जाती हैं। आपने पैदा किया, कर लेती हैं अच्छा बच्चा पैदा, अगर आपको अपना एक बच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं और दूसरा अच्छा लग रहा है, आदत के नाते से, वैसे मोहब्बत तो सबसे होती है। दूसरी बात देखिए कि बच्चों को कभी आपस में ये ना कहें, खा लो नहीं तो भाई खा जाएगा, सुना है कभी ये जुमला, मतलब एक बच्चा है वो मिसाल है कि वो मूड ख़राब है उसका, चॉकलेट दी, आइसक्रीम दी, कुछ दी, वो नहीं खा रहा, आप क्या कहते हैं, खा लो नहीं तो दूसरा खा जाएगा, आप उसको दुश्मन बनाकर ना पेश करें। फिर भाई बहनों के आपस के ताल्लुकात को बेहतर कराने के लिए आप अपने बच्चों के, अब आप इसको छोटे बच्चों में लेंगे ना तो बड़े होके फिर खुद ही आ जाएगा, आप उनको ये बताइए कि मेरे बात यानी माँ और बाप के बाद सबसे ज़्यादा आपसे प्यार कौन करता है, भाई बहन करते हैं। भाई बहन हमारी शख्सियत का एक हिस्सा होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के लड़े होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर भाई बहनों के हकूक हैं कि भाई विरासत में बहनों का हिस्सा ना खाएं। भाई और बहन रिश्ते नातों के करने या टूटने के बावजूद भी आपस में ना टूटें, रिश्ते निभें ना निभें, भाई बहनों के रिश्ते ले ना बहनों के ले ना भाई उनके घर से ले ना ले, खून के रिश्ते नहीं ख़त्म होंगे। दीन की फ़िक्र कीजिए, आपके हर मिसाल है मैंने बोल दी है, अखवान यूसुफ वाले किरदार में यूसुफ ने क्या किया था, ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, तुम पे कोई पकड़ नहीं। भाई बहनों में दरगुजर कीजिए, मिट्टी डालें, खून के रिश्ते हैं, कभी इनसे कतए ताल्लुक ही ना करें, ये ना कि हम इनसे नहीं मिलेंगे, हम इनसे अलग वो हमसे अलग। और फिर वही बात है, हमने भाई बहनों के हकूक क्या रखे हैं, जब उनके बच्चों की शादियां हो तो हज़ारों का खर्चा करके जाओ और उनकी हर किस्म की रस्म में शामिल हो, खाला ने क्या दिया सलामी दो जी, फुफ्फो ने क्या दिया ये करो जी, हम हकूक इनको कहते हैं, ये कोई हकूक नहीं। अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी सोशल लाइफ गुजारी होती तो ये कुछ भी ना होता। आप अपने भाई बहन के घर किसी ऐसे मौके पे नहीं जा पाते जबकि सारे दूसरे आए हैं, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, मामू नहीं आया, फुफा नहीं, फुफो नहीं आई, ये नहीं आया, ये जकड़बंदियाँ हमारे कल्चर की हैं, इस्लाम इस पे आपको कुछ नहीं करता। हाँ एक चीज़ नहीं बर्दाश्त करता और वो क्या है कि आप अपने मामले को दूसरों के साथ इस तरह रखें कि उनकी गलत चीज़ों में खामोशी से शामिल होते रहें, ये सबसे बड़ी कतरहमी है। क्या रिश्तेदारी का मामला है, यानी रिश्तेदार की खुशी के लिए उसके गलत काम में शरीक हो जाना, ये कतरहमी है। रिश्तेदार हराम माल कमाते हैं सिर्फ इसलिए चुपके से जाकर खा पी लिया और उनको भी ना एहसास कराया कभी ज़िंदगी में कि नाराज़ होंगे, और ये कतई रहमी है। सबसे बड़ी सिला रहमी अपने रिश्तेदारों के दीन की फिक्र कीजिए, दुनिया की फिक्र कीजिए, और भाई बहनों में ख़ास तौर पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये खुश होंगे ना अपने घरों में तो आपको याद भी नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे इनमें से किसी को ज़रा सी सुई भी चुभेगी ना तो सबसे ज़्यादा आपको दुख होगा। ये एक फितरी सी बात है, मेरी नज़र में भाई बहन का रिश्ता है ही ये, दुख में बहुत याद आएंगे। अपनी जगहों पे खुश रहें, आप कहते हैं ये खुश, हम अपने उम्मीदें न लगाएं, फिर क्या भाइयों के कुछ ज़्यादा हक हैं बहनों पे? जाएंगे तो उधर रहेंगे। देखिए ये कल्चरल बात है ना कि माँ बाप के बाद फिर भाई होते हैं। आप पाकिस्तान जाते हैं या आप इंडिया जाते हैं तो अगर माँ बाप नहीं है तो शायद आप सबसे पहले एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आपके भाई के घर आप जाते हैं। आप चार भाई हैं, किसके जाएं? तकाबुल में ना कुछ करें, लेकिन सिला रहमी तो हर एक के साथ है, ताल्लुकदारी तो हर एक के साथ है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अगले को बोझ में डाल देते हैं, नहीं ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, भाई शहर में रहता है आप उधर नहीं गए, किसी और के साथ रह लिया तो बड़ी बुरी बात होगी। ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन जो चीज़ आप में बर्दाश्त ना करें वो क्या है? उनकी कोई गलत बात। और अल्लाह ताला हमें एक दूसरे की हिदायत का जरिया बना दे। आखिरी टॉपिक जो ना ही करें तो अच्छा, ससुराली रिश्तेदार। बाज़ लोग ससुराली को इसराइली कहते हैं, गलती से पढ़ते हैं, तो आपकी शीट में तो सही ही लिखा हुआ है। देखिए ससुराल में शौहर को हमने डिस्कस कर लिया, वो सबसे पहला ससुराली होता है, ठीक है, उसके बाद रह गया पीछे कौन? सास और ससुर और देवर जेठ और नंदे, और यही तीन है ना, वो एक ही बात है, सारे ही एक है। देखिए मैं चंद कोड वर्ड बोल देती हूँ। एक लेक्चर हुआ था अभी ये लास्ट ईयर ही 2017 में, मुझे लगता है अब तो 18 गुजर गया ना, जी मेरा हेल है 17 के लास्ट में किया था हमने सास और बहू का रिश्ता। बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ था, सासें बहुओं को नहीं थी लाई वैसे, वो काम लगी हुई है, उनको था पता नहीं आज क्या हो जाना है, लेकिन जब लेक्चर सुन रही थी तो मैं बैठी फ़ोन कर रही थी कि आ जाना घर से, अब काम तो होते ही रहेंगे। वो समझ रही थी शायद आज सासों के जुल्मों की बात होनी है, लेकिन बात म्यूचुअल थी। आप भी सुनिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह दामाद और ससुराल, इस पे भी बात हुई हुई है। इज्जत के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते हैं। आप चाहें इसको समझने के लिए तो किसी ऐसे लेक्चर में एक टॉपिक डाल दीजिए जो यहाँ हो और जहाँ ये सब आ सके। करना है इस पे टॉपिक, करना चाहते हैं? और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं लोग ससुराल के मामलों में, पता है पाकिस्तानी लोग अपने ससुराल से इतना नहीं डरते जितना इंडिया के डरते हैं। ये मेरी एक प्यार और मोहब्बत की बात है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखे, वो दीन जो हमसायों के हकूक दिला रहा है। देखिए ना कितनी लंबी लिस्ट है हमारी पड़ी, या आज जहाँ पे ये टॉपिक पूरा हो रहा है हमारा इस वक्त, अगर तो आप देखिए क्या वो ससुराल के हकूक नहीं देगा? और ये बात कहने की को लगती है कि जी ये बताएं कि शौहर अपनी बीवी को अपने माँ बाप की खिदमत पे मजबूर कर सकता है कि नहीं? बेटा माँ के कपड़े धो ले तो ठीक है, बहू नहीं धुलेगी। सुना मैंने कहानियाँ, सीधी सी बात है, क्या करो? आप में से कोई इसका जवाब दे। एक तर जिगर वाले के ऊपर भी एहसान। और अभी हमने बुजुर्गों के हकूक पढ़े हैं ना, तो क्या सास ससुर बुजुर्ग नहीं होते? बड़े नहीं होते वो? हमसाए नहीं होते? हमने हमसायों के हकूक पढ़े हैं कि नहीं? तो घर में रहने वाले हमसायों से ज्यादा हुए कि ना हुए? ये सिर्फ फतवों की बात नहीं है, ये तकवे की बात है। एक किसी की बात जो उन्होंने पल्ले से बांध ली, कहीं बात सुनी होगी क्लास में और फिर शेयरिंग भी की थी उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि आपका दिल क्या चाहता है कि आपकी भाभी आपकी अम्मी के साथ कैसी हो जो बैक होम आपकी अम्मी को टेक केयर कर रही हैं? तो कहा बहुत अच्छी हो, आप ये चाहती हैं ना, तो आप अपनी सास के साथ जो आपके साथ वेस्ट में रह रही हैं उनसे अच्छी हो जाए। बिलीव मी उन्होंने ये बात कहाँ सुन ली और फिर उन्होंने अमल किया, और उन्होंने इतना लंबा फिर लिखा अपना फीडबैक कि मैं इस मुल्क में बैठकर अपनी सास से कुछ अच्छा करती हूँ ना तो उधर से मेरी अम्मी और मेरी भाभी के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है। आप आज किसी के साथ नेकी करेंगे ना कल कोई आपके साथ करेगा। खास तौर पर शादी के बाद बेटियाँ तो मैके के साथ बहुत टची हो जाती हैं, वो माँ बेटी जिनकी बनती नहीं, दूर जाने पे वही माँ ज़्यादा रोती है। बेटी को भी माँ का फिक्र होता है, बेटे को भी होता है, लेकिन माँ का ज़्यादा फिक्र होता है बेटी को। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आप सब जानते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि इस रिश्ते में फतवों को ना डाला जाए, अच्छा रखा जाए। कि आज जितना ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया बढ़ गया, हमारा अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ यही करूँगी कि सब की लिमिट्स हैं, सब के हकूक हैं, अल्लाह ने हक दिया हुआ है, कोई बांधी नहीं है, कोई किसी को पकड़ के लाने वाली नहीं। बहू इसलिए नहीं आती कि उसको एक काम वाली बना लिया जाए, और सास ससुर घर की को पोटलियाँ नहीं है कि उनको बेकार माल समझ के क्लोज़ेट में डाल दिया जाए। इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, आपके बच्चों की टेक केयर जो आपके उन बच्चों के दादी दादा कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। जो मोहब्बत फूफी देती है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में माँ के बाद कोई दे सकता है, बिली भी खाला भी नहीं देती, क्योंकि खाला पास नहीं होती। वो तो कभी साल में एक दफ़ा आएंगे मिलने और प्यार प्यूर करके चले चले जाएंगे, लेकिन फूफियों ने तो, वो कहते हैं ना, वो फूफो कौन होती है, बड़ा मज़े का आर्टिकल था कहीं, कभी किसी ने भेजा था, फूफो वो होती है जो आपके गंदे लॉलीपॉप भी चूस लेती है, फूफो वो होती है जो अपनी सारी पॉकेट मनी आप पे लगा देती है। तो कदर कीजिए, बस इन रिश्तों की कदर करें। कभी कभी बीवियों की खुद नहीं लगती ना अपने ससुराल से, तो बच्चों के दिल में नफरत डाल देती हैं, बस फूफो अच्छी नहीं, दादी अच्छी नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकती अच्छी। ये ना करें, अपने बच्चों के दिल में अपने ससुराली रिश्तों से नफरत ना डालें। इसी तरह आपस में नहीं बनी तो बच्चों को दादी दादा के खिलाफ कर दिया, और नानी नाना को हमेशा आगे रखना। और मुझे आज तक नहीं समझ आई कि चंदा मामू ही क्यों होता है, चंदा चाचू क्यों नहीं होता, ये चंदा मामू क्यों है, सोचने की बात है ना, क्योंकि माँ के दिल में मामू बैठा हुआ है ना। तो प्यार कीजिए, यकीन करें, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के पैगंबर बन जाए, आपको कुछ निचोड़े ना तो मोहब्बत निचोड़े, इसके बाद आपकी ज़िंदगी का हर रिश्ता अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी रह गए देवर जेठ पाबंदियां हैं, अलहम्बुल मौत, बुखारी की रिवायत है, काला के नबी हम क्या है, यानी शोहर के इसमें हम में याद रखे, देवर भी आता है, जेठ भी आता है, नंदोई भी आते हैं, नंदों के बच्चे भी आते हैं, जेठ जठानियों के बच्चे सब आते हैं, मतलब शोहर की तरफ से जो गैर महरम है ना वो अलहम है। तो आपने फरमाया मौत, क्या मतलब, घर में रहते हुए बेतकल्फी हो जाती है, कभी तन्हाई भी होगी, शैतान ज्यादा बरगलाएगा। तो शरई हदूद और पाबंदियों में रहते हुए इन रिश्तों की इज्जत भी कीजिए, प्यार भी कीजिए, खिदमत भी कीजिए, लेकिन बेतकल्फी के नाम पे आप कहना कि देवर तो मेरा भाई है, और जो फजूल किस्म की रसूमात है हमारे कल्चर में, शादी के बाद इतने बड़े देवर को लाके घुटने पे बिठा दें, क्या वो उठाएंगे जब पैसे देंगे, ये बेहयाई भी है और जहालत है। और बीवी की बहन को साली कहकर आधे घर का मालिक कर देना, ये भी जुल्म है। आज हम कई फिल्मों की भाषा बोलते हैं ना, ऐसी फजूल हरकतें हैं, इस्लाम इन चीज़ों में बहुत क्लियर है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि क़यामत के दिन हमारे ऊपर किसी का भी हक ना हो। और ससुराली रिश्तों में एक आखिरी बात कर देती हूँ, खुदा के लिए अपने शोहरों को उनके मैके से दूर ना करें। आपका ससुराल आपके शोहर का मैका है, अब इसी में ससुराली रिश्तों में क्या मर्दों का भी ससुराल होता है? बिल्कुल होता है, उसकी भी कोई मिसाल है कुरान में। हज़रत मूसा 10 साल तक अपने ससुर के पास रहे, हालांकि बात सिर्फ 8 साल की हुई थी, उनके घर में रहे। क्या घर दमादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, किसी की सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है। वो चाहते हैं कि एक बेटी जो है वो हमारे करीब ही कहीं रहे, और वो शादी की शर्तों में ये शर्त रखते हैं कि ये मर्द या लड़का हमारे साथ रहेगा, कोई गुनाह की बात नहीं है, ये अब हम ताने देते हैं। फिर एक और इसमें सवाल नोट कर लें, क्या बेटी के घर से पानी पी सकते हैं, नमक खा सकते हैं बेटी का? बिलीव में ही मुझे किसी ने कहा मेरी अम्मी सिर्फ इसलिए नहीं आती मेरे पास कि ताने मिलेंगे कि बेटी के घर आएंगे, तो आप होटल में रख लें उनको, आप जो ताना देंगे उनके घर में अपनी माँ को रख लें, ये सब बेकार बातें हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे मामलात में सुरखरू करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।